32 कहानी मुस्कुराती औरतें। लेखिका मैत्रेयी पुष्पा। समकालीन दौर की चर्चित वरिष्ठ लेखिका मैत्रेयी पुष्पा कहन के अपने विशिष्ट अंदाज और स्त्री जीवन से जुड़ी विडंबनाओं को अपने नए तेवर एवं नई भंगिमाओं के साथ साहसिकता से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। स्त्री जीवन की दशा दिशा और उसकी ऊपरी चकाचौंध के आवरण को पूरी निधड़कता से बेधती या बेजोड़ कहानी स्त्री जीवन का सर्वथा अनूठा पाठ कुछ इस तरह रचती है, जो कि पाठकों के दिलो दिमाग पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ती है। बेपरवाह यौवन, ऐसे शीर्षक के साथ हमारी तस्वीर अखबार में छपी है। अखबार गाँव में आया है, प्रधान के चबूतरे पर लोग देख रहे हैं। कह रहे स्वर में स्वर मिलाकर, आवारा लड़कियां, मेरे सामने बरसों पुराना यह दृश्य है। आवारा लड़कियों की ले दे हो रही थी। आवारा लड़कियों को पता न था कि आवारा कैसे हुआ जाता है। मुरली ने अपनी माँ से पूछ लिया कि हम आवारा कैसे हुए। माँ ने मुंह से नहीं, मुरली की चोटी को झटके दे देकर बताया था और बीच बीच में थप्पड़ मारे थे। कहा था, भीग कर तस्वीर खिंचाने वाली लड़कियां आवारा नहीं हुई तो क्या सती सावित्री हुई। मुरली जरा ढीठ किस्म की लड़की थी, क्योंकि अक्सर ऐसा कुछ कर जाती जिसकी सजा पिटाई के रूप से कम न होती। अपनी धृष्टता को बरकरार रखते हुए बोली, न भीगते तो हम सती सावित्री हो जाते। तुम हमें मुरली न कहती, सती या सावित्री कहती। जवाब देती है, चोरी और सीना जोरी। कहते हुए माँ ने अब की बार मुरली को अपनी जूती से पीटा, क्योंकि उनके हाथ में चोट आ गई थी। मुरली के सिर से किसी के हाथ टकराएं और जख्मी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अम्मा, सलोनी और चंदा भी तो भीगी थीं। बरसात हो तो गांव में कौन नहीं भीग जाता। सबके पास तो छाता होता नहीं है, फिर लड़कियों को तो छाता मिलता भी नहीं। मुरली मार खाकर रोई नहीं, बहस करने लगी। माँ ने अब की बार अपने माथे पर हथेली मारी, बिलाप के स्वर में बोली, करमजली तू भैया का छाता ले लेती, बहुत होता मेरा लाल भीगता चला आता। ज्यादा से ज्यादा होता उसे जुकाम हो जाता, बुखार आ जाता, पर तेरी बदनामी तो अखबार के जरिए दुनिया जहान में जाएगी। भीग कर फोटो खिंचाई, बाप के मूछों को आग लगा दी। हाय, जिसकी बेटी बदफैल हो जाए उससे ज्यादा भागा कौन। अम्मा ने मुंह पर पल्ला डाल लिया और मुरली अपने खींचे गए बेतरतीब बालों को खोलकर कंघी से सुलझाने लगी। सामने भैया आ गया। 13 साल की मुरली अपनी तंदुरुस्ती में भैया की 15 वर्षीय अवस्था से ज्यादा विकसित, ज्यादा मजबूत और ज्यादा उठान शरीर की थी। भाई से बोली, तू भीगता, तेरी फोटो कोई खींच लेता, अखबार में छाप देता, तू आवारा न हो जाता। छाता इसीलिए साथ रखता है। भैया माता पिता के अपमान को अपनी तौहीन समझ रहा है। मुरली को पता न था, जब उसने कहा, मैं लड़का हूँ सो मर्द हूँ, मेरी फोटो कोई कैसे खींचता, खींच कर करता भी क्या, कोई उसे क्यों देखता। सब लोग तेरी और रेनू की फोटो देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ कर, और फिर आवारा कहकर एक दूसरे को आंख मार रहे थे। मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं भाग आया। मैंने यानी रेनू ने एक एल्बम बनाई थी उन्हीं दिनों। मेरी एल्बम में मैं हूँ और मुरली है। तस्वीर में हम दोनों भीगे हुए हैं। उस दिन वर्षा हो रही थी और हम घर से निकल पड़े थे, पेड़ों के नीचे छिपते फिरे, लेकिन पेड़ तो खुद ही भीग रहे थे। वे चिड़ियों तक को वर्षा से नहीं बचा पा रहे थे। गिलहरियाँ न जाने कहाँ छिप गई थीं, देखने पर भी नहीं दिखीं। एक मुश्त आकाश था, हमको नहलाया नहलाता हुआ। दूर सामने चंदो कुम्हार का खच्चर था, ध्यानावस्था में भीगता हुआ। हाँ, तालाब में बगुलों की पाते थीं, भीगे पंखों से किलोले करती हुई। बारिश में उजागर दुनिया यही थी हमारे साथ। अचानक एक छाताधारी आता दिखाई दिया, अपने जूते भिगोता हुआ चर्र मर की आवाज करता हुआ चला आ रहा था, हमारे पास चला आ रहा है। मैं और मुरली अपने शरीरों से भीगे हुए चिपके कपड़ों से बेखबर उसे टकटकी बांध कर देख रहे थे। उसने अपना कैमरा खोला और हमारी तस्वीर खींच ली। हम कैमरे को देखकर नहीं, छाते वाले बाबू को देखकर हंस पड़े। हमारे हंसने का मकसद क्या था हम भी नहीं जानते थे, मगर वह मुस्कुराया जैसे सब कुछ समझ रहा हो। उसने एक तस्वीर और खींची, जब हमें थप्पड़ और बाल खिंचाई के बीच अखबार दिखाया गया तो हम उसमें खिलखिलाकर हंस रहे थे। उसके बाद मैं कई दिन तक डरी रही, बारिश भी कई दिनों तक बंद रही। मेरा दिल ऐसे ही सूख गया था जैसे बादल सूखे सूखे। मुरली भी अपने भीतर पनपते रूखे सूखेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह अक्सर ही मुझसे कहती, चल बाहर चलते हैं, देखना हम हंसेंगे तो बादल बरसेंगे, बादल बरसेंगे तो छाते वाला आएगा, वह आएगा तो हमारी तस्वीर खींचेगा, तस्वीर खींचेगा तो अखबार में छापेगा, हम अखबार में होंगे तो दूर दुनिया तक जाएंगे। यह तुझसे किसने कहा मुरली? उसी ने जो फोटो खींच रहा था। उससे तू मिलती है? मैं नहीं मिलती, वही मिल जाता है। ताल में नहाती चिड़ियों की तस्वीर खींचता है, अखबार में छापता है, तब कोई नाराज क्यों नहीं होता? चिड़ियां भी तो लड़कियां ही होती हैं। हाँ होती हैं, मगर वे उड़ सकती हैं, हम कैसे उड़ें? ऐसी बातें करते सोचते हम बड़े होने लगे। मुरली मुझसे बिछुड़ गई, उसका ब्याह हो गया मेरी एल्बम में। ब्याह के बाद एक तस्वीर मुझे मुरली के भाई से मिली। मुरली उसमें आधा घूंघट किए गेहूं की रास की उड़ाई कर रही है, बाहें ऊपर उठी हुई है क्योंकि डलिया हाथ में है। फोटो के पीछे लिखा था, आर्थिक गुलामी की शिकार औरत। मेरा जी धक से रह गया। मुरली और आर्थिक गुलामी? नहीं, वह तो आवारा थी। मैंने मुरली की यह तस्वीर अपनी एल्बम में लगा ली, समाज सेवी संस्था की सदस्या का दिया शीर्षक काट दिया, उसके नीचे लिख दिया आवारा औरत, क्योंकि मुझे दासी, गुलाम और सेविका से आवारा औरत शब्द ज्यादा ताकतवर लगता है। इसके बाद एल्बम के 3 पृष्ठ खाली छोड़ दिए मुरली के लिए, मगर बहुत दिनों तक कोई तस्वीर मिल नहीं पाई। हाँ खबर मिलती रही कि मुरली अपने घर है, लड़ाई झगड़ा करती है, सो भैया भी उसकी ससुराल नहीं जाता। पिता जब भी बुलाए जाते हैं मुरली से अपनी इज्जत रखने का कौल देकर आते हैं। मुरली मेहनत करती है, खेत खलिहान उसी के दम पर आबाद है, यही माता पिता का सहारा है, और ऐसी कल्पनाओं से मायके वाले आश्वस्त रहते हैं। मेरी माँ कहती है, गांव की औरत गुलामी और मुक्ति का अंतर क्या जाने, अज्ञान और चेतनाहीन होती है, अपने श्रम को मुफ्त लुटाती रहती है, आर्थिक पराधीनता से जोड़कर देख नहीं पाती, अनाज गल्ले को खलियान में देखकर खुश हो जाती हैं। बस मुरली क्या करती होगी, मैंने एक पन्ने पर सवालिया निशान लगा दिया है। अगले पन्ने पर तस्वीरें लगी हैं मेरे साथियों सहपाठियों की, उनके ब्याहों की। इसके बाद की तस्वीर में मेरा ब्याह हो गया है। शादी की प्रमुख फोटो में मेरे साथ वर है और माँ है। दूसरी तस्वीर में माँ के साथ महिला मंगल की वे स्त्रियां हैं जो सामाजिक स्तर पर अपनी आधुनिक पहचान के साथ हैं। माँ ने इन तस्वीरों को मेरी एल्बम में खास तौर पर क्यों लगवाया? ये सामाजिक कार्यकर्ता और अफसर औरतें ससुराल तक मेरे साथ एल्बम के जरिए आई हैं। माँ का क्या मकसद है? क्या इसीलिए कि मैं गंवार मुरली के ख्यालों में न खोई रहूं, उसके उजड़ से व्यवहार को भूल जाऊं? उसकी आवारा प्रवृत्तियां मेरी शिष्टता का नाश करती रही हैं। अतः मुझे पढ़ी लिखी भद्र महिलाओं जिन्होंने अपने लिए प्रगति पथ चुने हैं उनसे आधुनिकता की ऊर्जा प्राप्त करके पुनर्नवा होना है। मेरी माँ ममता और लाड़ का ऐसा खजाना नहीं कि मुझे कैसे भी खुश रखने की सोचे और मेरे लिए अन्य माओं जैसा अधिक से अधिक दुलार उमड़ता आए ब्याह के बाद। तस्वीर वाली मेरी माँ की आंखों में वह चुनौती रहती है जिसे उन्होंने मेरे लिए खास तौर से रख छोड़ा है। जब भी फोटो देखती हूँ वे कहती नजर आती हैं, गौर से देख, ये औरतें वे हैं जो अपने पांव खड़ी हैं, ये स्त्रियां पढ़ लिख कर घर से निकली, नौकरी की, आर्थिक स्वतंत्रता पैदा कर ली। स्त्रियों के लिए आर्थिक पराधीनता बेड़ियों का काम करती है। तू समझ रही है ना कि अब भी तुझ पर मुरली सवार है, अनपढ़ लड़की, बेशर्म जात। पृष्ठ 34। हाँ मैं मुरली की तरह ही अपने घर में हूं। कालीज की कई लड़कियों की तरह मैंने ब्याह को ब्याह के रूप में सुरक्षा कवच माना है। माँ के हिसाब से मैंने ब्याह के किले में खुद को बंद कर लिया है, गृहस्थिन की तरह चार दीवारी में गुम होकर रह गई हूँ। अगर मैंने नौकरी नहीं की तो निरंतर प्रताड़ित होती रहूंगी। पराधीन की तरह मेरा शोषण किया जाता रहेगा। क्या मैं यहाँ से निकलने का निर्णय भी ले सकती हूँ? मैं अपने बूते रहने खाने के सुविधा साधन जुटा सकती हूँ। मैं निरी गुलाम औरत माँ का वह मंत्र नहीं माना जिसके चलते स्त्री कुछ कमाकर आत्मनिर्भर होती है, अपनी आज़ादी का बिगुल बजा सकती है, साथ में मर्यादा और शील का पालन करती है। आपका मंत्र अचूक नहीं है माँ। यह बात मैं आज तक इसीलिए नहीं कह पाई क्योंकि नौकरी पेशा न होकर आश्रितों में शुमार की जाती हूँ। बिना मुझसे पूछे ही आश्रित की चुप चिप्पी मेरे वजूद पर माँ ने चिपका दी है, बिना यह समझे कि मेरे घर में मेरी हैसियत क्या है। समझ लिया है कि मेरी आर्थिक पराधीनता ही मेरे दासत्व भरे गुणों की खान है। माँ ने कहा था, उन औरतों को देख जो कामकाजी महिला होने के लिए, नौकरी पेशा बनने के लिए विवाह बंधन तोड़ गईं, या उन्हें देख जिन्होंने अपना कैरियर पहले अर्जित किया उसके बाद विवाह। मैं जानती हूँ कि माँ को विवाह के पक्ष में लिया गया मेरा फैसला रास नहीं आया था। क्या मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो उनकी विवाह वाली राय में कोई अंतर आता? जबकि आर्थिक रूप से आज मेरा उन पर कोई वजन नहीं, सोच विचार में डूबी थी, अनायास ही एल्बम का पन्ना पलट गया। अरे फूलकली मैडम, विकास खंड मोट की सहायक विकास अधिकारी महिला यानी कि ADOW, इनकी उम्र 28 से ज़्यादा नहीं, फोटोजेनिक चेहरा ही नहीं, वे खासी लावण्यमयी स्त्री हैं। अच्छी लंबाई उन्हें और भी आकर्षक बनाती है, साड़ी पहने या शलवार कमीज उन पर सब फबता है। उनके बारे में माँ ने ही बताया था, MA करने के बाद ट्रेनिंग के लिए चुनी गई, नियुक्त हुई बबीना ब्लॉक में और तबादला होकर आई मोठ ब्लॉक। योग्यता के बल पर पद नहीं मिलता तो योग्यता किस काम की? माँ ऐसा मानती हैं। पद का आधार ही है कि ब्लॉक के रिहायशी क्वार्टरों में शानदार घर मिला है फूलकली मैडम को, साथ में एक अर्दली भी। ग्रामीण इलाकों में दौरा करना होता है तो जीप भी मिलती है। माँ फूलकली मैडम को आज़ाद भारत की आदर्श स्त्री के रूप में देखती है। आदर्श रूप में खास बात यह भी है कि फूलकली मैडम किसी मजबूरी के कारण घर से नहीं निकली और न लड़की की नस्ल में पैदा हुई लड़की की तरह उन्होंने ब्याह किया। कैरियर सबसे पहले, आर्थिक आत्मनिर्भरता जन्मसिद्ध अधिकार की तरह हासिल की। ब्याह का क्या, ब्याह भी कर लिया अपनी सुविधा को देखते हुए एक ग्राम सेवक VELW से। मेरी माँ ने उनका यह निर्णय भी जी भर कर सराहा। पुरुष हम ही को अब कमजोर मानकर प्रताड़ित नहीं करेगा, ऊंचे स्तर पर न सही बराबरी से सम्मान देगा। ऐसे फैसलों को देखकर ही तो माँ मुझसे और भी खपा हो जाती है, क्योंकि मैंने अपने लिए उनके बताए वरों को नज़रअंदाज किया क्योंकि वे मुझे अयोग्य लगे। माँ खफा हो जाए तब क्या वह माँ नहीं रहती? मैं उनकी बेटी समय समय पर खुद ही उनके पास पहुँच जाती हूँ। माँ की नौकरी के कारण उन्हें मेरे पास बैठने का पर्याप्त समय नहीं मिलता, मगर मैं चाय बनाने और उनके लिए खाना तैयार करने को ही अपना माँ बेटी का निकटतम संबंध मानकर वहाँ बनी रहती। कपड़े धोना, रसोई की सार संभाल करके क्वार्टर को घर बना देना मेरी कला का नमूना माँ के सामने पेश होता, माँ चिढ़ जाती। मुझे नहीं पता था बिटिया कि मैंने तुझे पलोथन पीटने, रोटी बनाने को ही पढ़ाया था। तू महाराजिन और कहारिन से ज्यादा क्या है? मुरली की संगत का असर देख लो कि पढ़ी लिखी लड़की की योग्यता पर काली रंगत चढ़ी है। फूलकली मैडम माँ से मिलने आई। हे भगवान, करेला और नीम चढ़ा? माँ मुझे मैडम के नाम की नसीहत देकर हलकान कर देगी। कहीं माँ ने उन्हें खास तौर पर मेरे रहते तो नहीं बुलाया? वे ही मुझे समझाएं, मैं अपने पांव खड़ी हो जाऊं, यहीं ज्वाइन कर लूं अनट्रेंड की तरह। ट्रेनिंग अगले साल हो जाएगी, बच्ची गोद में है तो क्या हुआ? नौकरी वाली औरतों के बच्चे क्या पलते नहीं? फूलकली मैडम, माँ ने उन्हें किन उम्मीद भरी नजरों से देखा है मैं समझ गई और दहलने लगी। बच्ची को पालने से गोदी में उठा लिया। खाना पीना क्या की दावत का शानदार नजारा। माँ ने दिल खोल दिया और बेडरूम में उनके लिए नई चादर बिछाकर तकिया लगाकर आराम का बंदोबस्त किया। अधलेटी मुद्रा में फूलकली मैडम माँ से बतियाने लगी। कुसुम बहन, मैं आज यहाँ आई इसलिए कि झांसी आई थी, इलाइट सिनेमा हॉल में बहुत पुरानी फिल्म लगी है, उसी को देखने आई। मैंने पूछ लिया, कौन सी पुरानी फिल्म? साधना, यह कौन सी पिक्चर है? है, बड़ी अच्छी है। मुझे यह फिल्म अपने हस्बैंड को दिखानी थी खास तौर पर। दिखाई? हाँ दिखाई। कैसी लगी उन्हें? फूलकली मैडम चुप थी। कुछ ही क्षणों में वे उदास हो गईं और फिर धीरे धीरे अधिक से अधिक उदास। पृष्ठ 35। मैडम गुनगुना रही थी, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसाला कुचला, जब जी चाहा धुतकार किया। गला भर आया था। आगे की लाइन गाती तब तक आंखें डबडबा आईं। मैडम, यह बहुत रोने वाली पिक्चर है क्या? अपने हस्बैंड के साथ क्यों देखी? फूलकली मैडम अपनी आंखों को रुमाल से दबाए हुए, मगर उलाई ने ऐसा रूप धारण किया कि उन्होंने अपना मुंह घुटनों में गाड़ लिया। दमा के रोगी की तरह उसांसे भरने लगी, पीठ फफक रही थी। माँ ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। मैं अनकहे भय से आक्रांत। पूरे क्वार्टर में मौन शोकगीत सा बजने लगा। माँ कभी कमरे के बाहर जाएं, कभी कमरे के भीतर आएं, मगर कहीं भी रुककर खड़ी न हो पाएं। उनका विश्वास आश्वस्त और भरोसेमंदी भूचाल के से झटके झेल रही है, यह चेहरे से जाहिर हो रहा था। क्या माँ फूलकली मैडम का दुख जानती है या एकदम नहीं जानती? झटके से क्यों खा रही है? बीच बीच में अब सुबकी आ रही थी। फिर भी मैडम ने मुझसे पूछा, बड़े शहरों में नौकर पेशा स्त्रियों की दशा कैसी है? मेरा खाली खाली चेहरा, रीति रीति नज़र, फिर भी कहा, मैडम नौकर पेशा औरतों का दर्जा हमसे हर हाल में ऊंचा होगा। वे जब बाहर निकलती हैं शानदार कपड़ों की ही नहीं, शाही चाल के भी मालकिन होती हैं। हम जैसियों से बातें ही कहा करती हैं कि हमें उनकी थाह हो। हमें ऐसे देखती हैं जैसे हम ठलुआ हों, पति की पगार पर पैरासाइट की तरह जीने वाले पति की सेवा करते हुए जीवन बिताते हैं, और वे बराबरी की भागीदारी करती साथिन। फूलकली के चेहरे के भाव मैं कैसे पढ़ूं? फिर भी लगा उनकी आंखों में विचित्र सी दुनिया फैली है, नज़रों में आधी सी उठती है, जिसके झोंकों से खुद ही हिल जाती हैं और टूटी हुई डाल सी तकिए पर गिर जाती हैं। माँ ने मेरे लिए धरती पर चटाई डाल दी। बच्ची की शूशु पार्टी का डर था, खुद भी पटरा डालकर बैठ गई, क्योंकि फूलकली मैडम ने उन्हें हाथ पकड़कर अपने पास बिठाना चाहा था। चुप्पी के गहन सन्नाटी के बाद वे नाक सिनकने बाहर नाली पर गईं, पानी से मुंह धोकर तरोताजा सी हुई। माँ से कहने लगी, कुसुम बहन, मुझे नहीं पता था कि शादी की शर्तें पत्थर पर खुदी लकीरों की तरह होती हैं। उन लकीरों को कौन मिटा सकता है जबकि अपना भविष्य ही पत्थर हो गया हो? कुसुम बहन, यह तो ब्याह के बाद ही पता चलता है कि पति को जीवन साथी कहना कितना बड़ा झूठ है। शादी के बाद किसी भी लड़की को नया जन्म मिलता है, जीवन उसको अपनी तरह नहीं दूसरों की इच्छा से ढालना होता है। आप ऐसा कह रही हैं तो फिर आम औरत? माँ ने पूछा। आम औरत जो पति पर आर्थिक रूप से निर्भर है, कम से कम अपनी खुददारी का भ्रम तो नहीं पालती। वह सहयोग चाहे न चाहे सेवा करती जाती है, इसी काम को अपना जीवन मानती है। मैडम की बात पर मुझे मुरली याद आई। मुरली केवल पति सेवा करके रोटी कपड़ा और सिर पर छत पा गई होगी, इसी में संतुष्ट। माँ ऐसे जीवन को धिक्कार की नज़र से देखती है, और मुझे भी, जबकि मैं पति को साधना फिल्म विशेष रूप से दिखाने कभी नहीं लाई। हो सकता है अज्ञान ही हमारा कवच हो। फूलकली मैडम कह रही थी, नौकरी करके रुपए कमाने और धन को घर लाने का यह मतलब नहीं कुसुम बहन कि पति तुम्हें गैर मर्दों से मिलने जुलने की सहमत दे देगा, उनके साथ मीटिंग में जाने देगा या रूरल टूरों पर जाने से पहले हंगामा न करेगा। एक चौकन्नी निगाह का घेरा मेरे इर्द गिर्द रहता है, और जब मैं टूर से थकी हारी लौटती हूँ, पति की आंखों में फांके पड़ी होती हैं, भाषा में व्यंग, गालियां और कटीले ताने। किस यार के संग रात बिताई? क्या कह रहे हो? ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती? शर्म, हा, रंडी होकर हमें शर्म सिखा रही है। एक रात अकेले क्या रहे, दिमाग खराब हो गया। तेरी छीनाल की साली जुआ लड़ाती है, चार पैसे क्या ले आई, कायदा भूल गई, कहकर कमर की बेल्ट खोलने लगे। ऐसी मारपीट की चेहरे पर नीले काले निशानों को लेकर ऑफिस कैसे जाऊं। पृष्ठ 36। जाऊं तो अपनी चोटों को कैसे छिपाऊं, नहीं छिपे तो उनके बारे में क्या बताऊं। कटी छोड़ी, सूजी हुई नाक, खून में लिपटे दांत। कुसुम बहन, ये सजाए मेरे रूरल टूरों पर उतरती हैं, जिनका ब्यौरा मैं किसी को क्या दूं। एक बार कह दिया, अगर ज्यादा परेशान करोगे तो यहाँ के लोग ही तुम्हें, फिर क्या था, कहर टूटने लगा। कौन लोग हैं यहाँ के, बता कौन से आशिक तेरे आए, कोई साला टांग पर टांग धरकर चीर दूंगा। मैं चुप रही, मैं फिर ऑफिस के लिए चल दी। कहाँ जा रही है, बाँह ऐसे पकड़ी कि झटका दिया कि लगा कंधा उखड़ ही जाएगा। एक क्षण को सोचा, क्यों नहीं लड़कियों के स्कूल में नौकरी कर ली, और तभी उसने बाँह पकड़कर ऐसे खींचा कि मैं गिरते गिरते बची और खुद को साधते साधते गिर ही गई। वह टांग पकड़कर घसीटने लगा, बाहर तक खिचेड़ता चला गया, कैंपस के भीतर सड़क पर। साड़ी कहाँ गई, पेटीकोट बचा था, खिचड़ते हुए वह भी फटने लगा, तार तार चीर चीर, लोग तमाशा भी नहीं देख पा रहे, अपने बरामदों में कहीं कोने या आड़ में छिपकर खड़े हैं। जो सामने पड़ गया, उसने आंखें मीच ली, चेहरा घुमा लिया। विकास ऑफिस के इर्द गिर्द एक खामोश भगदड़ सी। क्या सब चुप हैं, सब डर रहे हैं, या पति के किए पर किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। औरतें भी नहीं रोक रही मेरी फजीहत को, इन औरतों के लिए मैं काम करती हूँ। अब मैं तकलीफों के बीच अकेली, अपने अंगों की रगड़ खाने वाली आवाज मुझे सुनाई देने लगी। पति के हाथ में इस समय मेरी टांग है, मुझे बेइज्जत करने के नाना तरीके हैं। मैं लुढ़कती हुई मर्दाने फुत्कारों से घिरी हूँ। कोई कह रहा है, आदमी है इसका, कोई और नहीं, बीच में पड़ेगा जो उसी को इल्जाम लगा देगा। उफ, यह इल्जाम नाम का माला लेकर क्यों रहते हैं पति लोग, जब भी कुछ मन मुताबिक न हो इस हथियार को दे मारते हैं। पत्नी के सिर पर मेरी हड्डियां ताबड़तोड़ चटकने लगीं, मांस छिलते छिलते सुन्न हो गया। दूर खड़े लोगों के घेरे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि मेरे शरीर से बहता खून धूप में चिलक रहा है। देखते ही देखते टांगों और जांघों के बाल झड़ गए। बस बस बस, माँ ने फूलकली मैडम का हाथ पकड़ लिया, उन्हें अपने कंधे से चटा लिया। मैडम फूट फूट कर रोने लगी, जैसे वे अभी इसी समय कुचली मसली गई हों और बाजार में नुमाइश के लिए रख दी गई हों। अंतिम वाक्य कराह कराह का निकला। मैं चारों दिशाओं में गर्दन मोड़ मोड़ कर देख रही थी, जमीन की रेत को ही टटोल रही थी कि धरती ही मुझे सहारा देकर उठाए। मैडम, पति से पूछा नहीं कि वे आखिर ऐसा कसाईपना क्यों करते हैं, इल्जाम लगाकर बेरहमी से छूट क्यों ले लेते हैं, क्या आनंद आता है इसमें। जो शिकायत है साफ साफ कहें तो फिर उसका निपटारा भी हो, कोर्ट कचहरी किस लिए है। माँ ने अपना हृदय उड़ेल दिया। फूलकली मैडम की आंखों का खालीपन आंसुओं से लबरेज था, बमुश्किल रूधे गले से बोली, कहते हैं मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि किसी के साथ तुम्हें बांट नहीं सकता, यहाँ तक कि इस महिला मंगल योजना के साथ भी नहीं। तुम्हारी कमाई पर अपनी मर्दानगी नहीं बेच सकता, हरगिज नहीं। तुम कल नौकरी छोड़ दो। माँ अब नीचा मुंह किए बैठी थी और फूलकली मैडम की उघड़ी बाहों पर पड़े निशानों से उनकी नज़र गुजर रही थी। मुझे बराबर मुरली याद आ रही थी, जो अब तक माँ के हिसाब से मेरे खाते में अप्रिय निशानी, न जाने मेरे सामने कभी किस रूप में प्रकट होगी वह आर्थिक रूप से पराधीन लड़की। माँ ने अपनी पूरी हमदर्दी दिखाते हुए मैडम को सलाह दी, आप सबको छोड़ो, सीधी रीजनल डायरेक्टर मैडम मनीषा चौहान से मिलो। कमाल है, महिला मंगल की महिलाओं पर ऐसे भयानक अत्याचार, वे जरूर कुछ न कुछ उपाय सोचेंगी, बड़ी से बड़ी महिला संस्था के सामने आपकी बात रखेंगी। हम सब आपस में ही एक दूसरे के दुख दर्दों के सहभागी हैं। फूलकली मैडम असहाय बकरी सी, जिसे अपने खात्मे के लिए गणासे वाला कसाई सामने दिख रहा हो, मौत के सिवा अब कुछ नहीं। कुसुम बहन, छोड़ो सब कुछ, अच्छा हो हम मर जाएं, आत्महत्या कर लें। बेशर्मी की भी हद होती है, कभी न कभी हया आकर खुद ब खुद लिपट जाती है। बहुत कुछ सहने का मादा पैदा कर लिया, लेकिन कभी न कभी कुछ धारदार नेजे की तरह कलेजे में घुप जाता है। आखिर इंसान हैं हम भी। फूलकली मैडम अब देर से चुप हैं। मैं और माँ उनके चेहरे पर मामूली सी हरकत की तलाश में हैं, मगर कहीं कुछ नहीं। माँ ने अपना साहस बटोरा और उनका हाथ थाम लिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, चिंता मत करो आप, मैं जाऊंगी मनीषा मैडम के पास, जरूर जाऊंगी। मनीषा मैडम के पास? वे बुदबुदाई, हाँ मैडम हाँ, जाना जरूरी है, कुछ करें आपके लिए, औरत ही औरत को समझेगी। कुसुम बहन, नहीं जाना वहाँ, क्या करेंगी वहाँ जाकर? बेहद कमजोर सी आवाज ने हमारे कान खोल दिए। बता तो दिया, क्या करूँगी, क्या कहूँगी? हमारी मैडम मनीषा चौहान रीजनल डायरेक्टर महिला विकास संस्थान तो बेशक हैं, मगर हैं तो वे औरत हैं, कहकर चुप्पी में फिर से गायब हो गईं फूलकली मैडम। सब चुप थे, अपने भीतर गुम, कहीं अपनी ही परतें चाहते हुए। मैं उन परतों में मुरली को खोज रही थी, वह भी ऐसे ही पिटकुट रही होगी। मैं अपनी एल्बम के पन्ने जल्दी जल्दी पलटने लगती हूँ। एक पृष्ठ पर मुरली अपने दो बच्चों के साथ खड़ी है। छोटे बच्चों के कंधों पर नन्हे नन्हे स्कूल बैग हैं। इस फोटो को देते हुए उसके भाई ने मुझसे कहा था, मुरली ने खास तौर पर तस्वीर तुम्हारे लिए भेजी है, कहा है कि रेनू शहर में ब्याही है, अच्छी तरह रहती होगी। मैं भी यहाँ खेती किसानी में रमी हूँ, नदी तालाब और बाग से अभी भी ऐसा ही नाता है जैसा बचपन में था। हवा और बादलों की तासीर और रुख पहचानना और ज्यादा आ गया है। पृष्ठ 37। मेरा ध्यान अचानक टूटा क्योंकि फूलकली मैडम भयानक सी हंसी हंस रही हैं। क्या मेरा और मुरली का मौन वार्तालाप सुन लिया मैडम ने? मुरली के ज्ञान रूपी अज्ञान पर हंस रही हैं, शायद उसकी आवारा ख्यालों पर हंसी आ गई हो मैडम को। फूलकली मैडम, आपकी हंसी का दुख आपके होठों पर फैल रहा है। अरे धीरे धीरे यह दुख बढ़ता ही जा रहा है। पूरा चेहरा अपनी गिरफ्त में ले लिया, नीला नीला अवसाद आंखों से झरता हुआ। कुछ बोलना चाहती हैं, संताप मुखर नहीं होने देता। वे प्रयत्न पूर्वक अपनी आवाज को सम करके बोली, कुसुम बहन, अपनी रीजनल डायरेक्टर मनीषा चौहान साधारण औरत नहीं, वे 100 सतियों की सती पति से लड़ने भिड़ने की सोच भी नहीं पाती। पति ने उनके बाहर आने जाने, शहर से बाहर टूर पर जब कभी ऐतराज किया, उन्होंने छुट्टी ले ली। जाना जरूरी हुआ और पति ने राइफल का मुंह उनकी ओर ताना, वे खड़ी की खड़ी रह गईं। राइफल का फायर पति ने दीवार पर किया, सामने छेद बन गया, ऐसे कई कई छेद। अपनी रीजनल डायरेक्टर योग्यता प्राप्त और क्षमतावान कुशल औरत हैं। जब जब वे घर से बाहर निकलती हैं, चैस्टिटी बेल्ट, लोहे का योनि कवच जिसमें ताला लगाने का प्रावधान रहता है, पहन कर ही निकलती हैं। बेल्ट की चाबी पति को थमाकर आगे बढ़ती हैं। वे जानती हैं आर्थिक स्वतंत्रता की कीमत। माँ हतप्रभ सी उन्हें देख रही थी। मैंने एल्बम एक और सरका दिया। चैस्टिटी बेल्ट मेरा वजूद कसने लगी हो जैसे, मैं बेचैन बिकल। फूलकली मैडम का सर्वांग थरथरा रहा था। माँ ने दहशत के मारे मेरी बांह कसकर पकड़ ली। मैडम अब भयानक रूप में अपना सिर हिला रही थीं। उनके बाल चारों ओर बिखर चुके थे, बिल्कुल ऐसे जैसे उन पर किसी चुड़ैल का साया उतर आया हो या हाथ पांव में देवी भर आई हो। वे अपनी छाती में बेशुमार मुक्के मारने लगीं और फिर प्रलाप, नहीं जाऊंगी इस कमीने को पिक्चर दिखाने, नहीं जाऊंगी महिला आयोगों के चक्कर लगाने, नहीं खाऊंगी अपने अच्छत सील की कसम, फिर कभी नहीं धरूंगी अपनी हथेलियों पर अंगारे। इतने जोशो खरोश के बाद फिर जैसे सारी ताकत चुक गई हो, धीरे धीरे निढाल होने लगी फूलकली मैडम। आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं, बंद पलकों की झिरी कहाँ खुली कि पतनाले बहने लगे। सब कुछ फेल हो गया कुसुम बहन, सब कुछ बेकार व्यर्थ, कहते हुए सारे शब्द आंसुओं में भीग गए। धीरे धीरे फुसफुसा रही थी मैडम। कुसुम बहन अपनी रीजनल डायरेक्टर लोहे की चेस्टिटी बेल्ट पहने रहती हैं। हमें वह हद से ज्यादा कमजोर औरत लगी, हमसे भी ज्यादा। मगर क्यों लगी वह कमजोर? हम सबके सब चेस्टिटी बेल्ट पहने रहते हैं कुसुम बहन, लोहे से भी ज्यादा मजबूत निगाहों की बेल्ट के घेरे में बंधे रहते हैं। मैं, तुम और यह रेनू, सबके सब। इसमें कुंवारी ब्याही और विधवा के लिए कोई मोहलत रियायत नहीं। यहाँ सारी औरतों को एक ही नियम के नीचे जीवन निर्वाह करना पड़ता है। तुम्हारा पति नहीं है कुसुम बहन, तो परिवार और समाज निगरानी रखता है। रेणु के पति को यहाँ का राई रत्ती पता रहता होगा। वह जहाँ जहाँ जाएगी मालिक की आंखें पीछा करेंगी। माँ अब झुंझला गई थी। लग रहा था वे जल्दी ही उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। फंदा काटने के लिए कह दिया, फिर आप तो तलाक ले लो। मैडम ने गौर से देखा माँ को। क्या कर रही हो, तलाक? फिर हंसने लगी मैडम। तलाक से हमारा मसला हल हो जाएगा? अरे कुसुम बहन, तलाकशुदा शब्द दूसरा सांप है जो खुद नहीं डसता, लोगों की निगाहों से विष चढ़ाता जाता है कि औरत नीली पड़ती चली जाए। डायवोर्सी एक गाली है कि घबरा कर औरत फिर किसी मर्द की खोज में हलकान होने लगती है और शादी उसे जरूरी कवच लगने लगता है। विद्यावती शुक्ला की हालत देखी थी ना, तलाक क्या ली, मुजरिम हो गई, चरित्रहीन मानी गई। अपमान के कोड़ों का दर्द पति की पिटाई से ज्यादा सालता था उन्हें, क्योंकि घर बाहर के सामाजिक समारोह में वे जहरीली सर्पिणी और राक्षसिनी के सिवा कुछ नहीं थी। यदि कुछ थी तो विमला के उस मर्द से फंसी हुई। कुसुम बहन, हम सोशल वर्कर नहीं, सेक्स वर्कर की तरह देखे जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं सेक्स के पैमाने से मापे जाते हैं। बैंक हो, अस्पताल हो, प्रशासनिक विभाग हो, यही नहीं घर आंगन हो, नातेदारी रिश्तेदारी हो। मैं क्या देख रही हूँ? ईश्वर के सुंदरतम कलाकृति, तुम्हारा हाल क्या है? वही जैसे पुरानी औरतें, पराधीन स्त्रियां पुरुषों की काम्या और रमणीया के रूप में अपनी सार्थकता सिद्ध करती थीं। उफ, मैडम का अपना मूल्यांकन भविष्य की आशंकाओं से जकड़ा हुआ है। माँ के पास घबराहट की पूंजी के सिवा कुछ नहीं, और मैडम की आंखों में खामोश लपटों के जलजले चिंगारी सी छिटकी। ऐसे क्या देख रही हो कुसुम बहन, फैसला तो कुछ न कुछ लेना ही है। क्यों, चेस्टिटी बेल्ट या तलाक, है ना? अब फूलकली मैडम की आवाज में बेकली से ज्यादा बेकसी थी। और फिर दोनों शब्द चेस्टिटी बेल्ट या तलाक उनके कंठ की लय में समा गए। वे बुदबुदा रही थीं या गा रही थीं। आंखों में अश्लील आतंक सा घिर आया। पुतलियों के आसपास तरलता में तैरते लाल नीले डोरे और छाती में घुमरती सांसें हिलोरों में हिलने लगीं। इस सबके बावजूद चेहरे पर पीला सा साहस उभरने लगा। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, वह कहता है। क्या वह अलग रहने के नाम पर मरने मारने को उतारू न हो जाएगा? शायद उसे अपनी तकलीफों का अभी एहसास नहीं, या इतना हृदयहीन हो गया है कि खुद को भी बुदबुदाने वाली मैडम ठंडी सी पड़ने लगी। लगा कि वे अपने सामान्य व्यवहार में लौट आई हैं। पृष्ठ 38। मैं भी उसे अपने साथ कहीं चाहती हूँ क्या? नहीं तो उसकी कड़ी से कड़ी इच्छा को अपने ऊपर क्यों छोड़ देती हूँ? मैं अपनी वफा की परीक्षा देती हूँ ना। माँ रसोई में पानी लेने चली गई थी। मैडम की हालत खराब जो हो रही थी, हो सकता है शरबत बनाकर लाएं। मैडम मुझसे मुखातिब थीं। रेनू, मैं जानती थी कि मेरे शरीर के हर हिस्से पर पति का अधिकार है। वह जब चाहे, जैसे चाहे मुझे प्यार कर सकता है। मैं आंख से आंख मिलाकर देखने की हकदार नहीं। फिर मैंने नौकरी छोड़ क्यों नहीं दी? अपनी बातों, अपने सवालों पर प्रतिक्रिया देने वाली भी फूलकली मैडम खुद ही थीं, क्योंकि उनकी हालत पर कुछ कहने के लिए मेरे पास असमंजस के सिवा कुछ नहीं था। क्या मैंने खुद से एक पोस्ट नीचे पद वाला पति इसलिए खोजा था कि वह मेरी दिनचर्या पर सवाल न करे? लेकिन रेनू, पति कोई पदवी नहीं होता, एक संस्कार होता है। किसी भी पद पदवी से बहुत बड़ा संस्कार, जड़ और मजबूत। तभी तो आज्ञा पालन में कोताही होते ही संगीन से संगीन सजा देता है। रेनू, मैंने तो यही माना कि समाज को व्यवस्थित रखने का सेहरा पति के सिर है। तभी वह पहले दिन औरत के पास सेहरा बांध कर आता है, कहकर फूलकली मैडम हंस दी। हंसी जंजीरों से जकड़ी हुई पालतू ढंग की थी। वे फिर खटिया पर तन कर बैठ गईं, लेकिन रीढ़ सीधी कर लेने में किसी विरोध का आभास न था। फिर भी कुछ बोलने के पहले होठों में बांकपन आया। रेनू, हम भी क्या करें, बड़ा अच्छा लगता है जब घर से बाहर निकलते हैं। लगता है सारे ठप्पे मोहरे फेंक कर खुले में आ गए हैं। बंद फाटक का दरवाजा हमने ही तोड़ा है और हमारी असली शक्ल निकल आई है। जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, वे मित्र हैं, पति नहीं, यही सोचकर मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वह क्या है कि हम तब भी पति की छाया अपने आसपास महसूस करते हैं। क्या हम इस मुक्ति को चाहते नहीं? सोचने लगते हैं, दिन भर की दुनिया नकली थी, असल संसार पति का है जो हमारे ऊपर शासन करता है, क्योंकि वह हमारी चिंता करता है, सावधान करता है। तब हम मान लेते हैं वही हमें बचाएगा भी। यह सब भावना हो या भ्रम, हम समर्पित होते जाते हैं। जितनी निष्ठा से गुलामी करते हैं, उतने ही खुद को सुरक्षित समझते हैं। मगर फिर क्या हो जाता है कि मैं अपनी आस्था से डिगती हूँ, लोगों के बीच आज़ादी के खुशगवार मौसम से गुजरती हूँ। आज बाहर क्या क्या हुआ, इसका ब्यौरा उसे नहीं देती, लेकिन यह सब भी मेरे लिए असहनीय सा कि मैं पति के सामने अपराधिनी की तरह पेश आती हूँ। उसकी तुनक मिजाजी, क्रूरता और नफरत के लिए खुद को हाजिर कर देती हूँ। क्या मैं यह भी मान लेती हूँ कि मेरे पुरुष के पास दिव्य दृष्टि है, उसने सब कुछ देख लिया है, मेरे पापों का अनुमान लगा लेता है वह। सच रेनू, मैं अपने अपराध बोध पर संगीन से संगीन सजा पाती हूँ, जैसे घर के बाहर जाने वाले इस तन मन का इलाज ताड़ना प्रताड़ना ही हो। कहने वाली मैडम गहरे श्वासों से गुजर गईं। फिर भी मैं अपना फैसला लूंगी, अवतर कमाए और काम आए, हर हाल में पति का फैसला यही होगा तो मेरा निर्णय क्या होगा? थकावट ने उनकी आंखों को ढक लिया, वे लेट गईं। सुस्त और ढीला शरीर था, धीरे धीरे बेहरकत था, नस नस में कोई नशा उतर गया हो, जैसे माँ ने अभी शरबत पिलाया था, नशीली गोली साथ ही दे दी क्या? लेकिन माँ कह रही थी, इनको सोने दे तो अच्छा है, अपने दुख दर्दों से बेहाल हो गई, सो बेहोश सी। होश में होती हैं, क्या क्या करने की नहीं कहती, तड़पती ऐसा है जैसा ज्वालामुखी पर बैठी हो। पर रेनू, ज्वालामुखी भी ठंडा हो ही जाता है ना? मैडम 1 घंटे बाद उठी, उठकर अपने सलवार समीज ठीक किए, दुपट्टा करीने से ओढ़ा, मुंह धोया, बाल संवारे, तांबिया चेहरा पाउडर से जरा उजला किया। वे ऊबड़ खाबड़ रास्ता पार करके आई हिरनी सी नरम घास वाले मैदान पर उतर गई हैं। भटकने की भीषण दशा में विश्रांत सी थीं। वे हल्के से मुस्कुराई, बड़ी खूबसूरत लगी मुझे। फिर वे मुझे समझाने लगी, असल में हमारी तमन्नाएं हमें तबाह कर डालती हैं। सपने हैं कि जाल जंजाल की तरह चिपट जाते हैं और हम पति की दुनिया को भूलने लगते हैं, बस बेवफा दिखाई देते हैं। छूटों की भी एक हद होती है ना? आज के लिए माफ करना रेनू, पूरा दिन खराब हो गया। पृष्ठ 39। मैं चकित सी, क्या मैडम अपनी छोटी छोटी आज़ादियों के लिए पश्चाताप कर रही हैं? पति से मिली यातना जायज लग रही है, सो खुद को अपराधिनी मानकर प्रायश्चित पर आ गईं। माँ की रोल मॉडल फूलकली मैडम और ओरिजिनल डायरेक्टर मनीषा चौहान चेतना संपन्न और आत्मनिर्भर औरतों की मिसालों की तरह अपूर्व रही हैं। मगर आज ये शारीरिक और मानसिक अपमान को सहने वाली औरत की पारंपरिक छवि की पुतली हैं। नहीं तो फूलकली मैडम क्यों कहती, पति अपनी बेरहम सूरत और कट्टर स्वभाव के साथ हमसे पेश न आए तो उसे पौरुषपूर्ण पुरुष कौन मानेगा? ऑफिस के मर्द ही हमें निगल जाएंगे। कुसुम बहन, मर्द मर्द से ही खौफ खाता है। मेरी एल्बम जिसका नामकरण शुरुआत में ही मैंने अपनी सखी के नाम पर मुरली किया था और इसी नाम की सार्थकता में मैंने इसे ऐसी स्त्री छवियों का खजाना बनाना चाहा था जो स्वतंत्र व्यक्तित्व और मुक्ति की चाहना करने वाली हो। माँ ने भी कर्मठ संघर्षशील और खुद्दार औरतों की तस्वीरें मेरी एल्बम के लिए जुटा दी थीं। आज सोचती हूँ विधायक सांसद और मंत्री इनके अलावा सिविल सेवा पुलिस प्रशासन तथा एथलीट निशानेबाजी तैराकी कला साहित्य और समाजकर्मी स्त्रियों की सिरमौर छवियां जो मेरी एल्बम में समाहित हैं इनमें से कितनी मुरली के साहस उसकी गतिशीलता भरी हट से समानता रखती हैं और कितनी अपने स्व को मारकर सामंती समाज में प्रचलित स्त्री के लिए यातना को पति के हक का हिस्सा मानती हैं। मुझे इसकी गहरे जाकर पड़ताल करनी होगी नहीं तो माँ समझेंगी मैं उनके विभाग की स्त्रियों का माखौल उड़ा रही हूँ। माँ ने मेरी एल्बम को घूरा और फिर कहने लगी, क्यों लगी रहती है यहाँ वहाँ से तस्वीरें इकट्ठी करने में? न तुझे ईश्वर से कोई वास्ता, न देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजती। तेरी एल्बम में गांधी जी और जवाहरलाल जैसे महापुरुषों की तस्वीरें नहीं, इंदिरा गांधी के फोटो लगाती तो हम भी समझते कि तू कहाँ कहाँ की औरतें जोड़ ली है। माँ चिढ़ रही है। क्यों चिढ़ रही है? फूलकली मैडम ने माँ के भीतर अपनी स्वतंत्र छवि का ढांचा तोड़ दिया। मनीषा चौहान रीजनल डायरेक्टर की मूर्ति खंडित हो गई। ऊपर से मैंने यह कह दिया कि तस्वीरें इकट्ठी करने का नहीं, विशेष छवियों से एल्बम सजाने का चस्का मुझे उसी दिन लग गया था जब मैंने पहले पहल वारिश में भीगते हुए मुरली के साथ फोटो खिंचाई थी। तस्वीर अखबार में आई थी। तस्वीर के ऊपर लिखा था बेपरवाह यौवन। सच हमें उसी दिन से बेपरवाह होना रास आ गया। हालांकि मुरली को मुरली की अम्मा ने उसके भाई के साथ मिलकर बुरी तरह पीटा था लेकिन उस सजा के बाद ही फोटोग्राफर से जान पहचान गाढ़ी होने लगी। दूसरी बार जब मैं फोटो खिंचाने के लिए तैयार नहीं थी और मैंने कह दिया था मुरली ऐसी बातों की हमें छूट नहीं देगा कोई, मुरली ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से बोली, कोई हमें छूट नहीं देगा तो क्या, हम छूट लेंगे भी नहीं। गांव में मुरली बेहात होती लड़की मानी गई और मेरी एल्बम में उसी बेहात आवारा लड़की की लोमहर्षक रोमांचित कर देने वाली तस्वीर पहले पन्ने पर लगी है। फूलकली मैडम जैसी औरतों की जिंदगी मुरली क्या कहती? मैं अपने आप में डूबती उतराती अपनी एल्बम को मजबूत बनाने की धुन में थी। अखबारों और टेलीविजन में इंटरनेट की वेबसाइट पर औरतों के कितने कितने कीमती नाम, मगर वे कीमती औरतें कितनी साहसी होंगी, उनमें कितनी सलाहियत होगी, मैं भटक भटक जाती हूँ। दुविधा भरे दिन, असमंजस की धड़ियां। कागज पलटते हुए एक कविता हाथ लग गई। किसने लिखी? किसी स्त्री ने। यह कविता मेजर सरोज कुमारी निशानेबाज शूटर के नाम कवि पवन करण की यह रचना। जैसे ही खबर बताई गई, तुमने जीत लिया है सोना, भीतर सुलगता यकायक एशिया से धधक उठा था वह। तुमसे दूर अपनी शिराओं में तुम्हारी उपस्थिति महसूस करते हुए जुट गया था वह करने उत्पात, सफलता पर तुम्हारी नाचने की खुशी में उतर आया नष्ट करने वह स्मृतियाँ। सरोजा कुमारी तुम्हारी बातों से लगता है तुम मंगलसूत्र और गोल्ड मेडल एक साथ पहले रहना चाहती हो, और गोल्ड मेडल है कि बार बार ढक लेता है मंगलसूत्र को, वही नहीं होता उससे सहन, क्योंकि गोल्ड मेडल तुमने खुद जीता है और मंगलसूत्र तुम्हें पहनाया गया है। मैं तुमसे कहता हूँ मेलबर्न से लौटो तो तुम्हारा निशाना अब वह सवर्ण छाती हो जो कहलाती है पुरुष। तुम ऐसा कर सकती हो, तुम्हें निशाना भी आता है साधना, तुम्हारे हाथ में पिस्टल भी है और गले में झूलता हुआ गोल्ड मेडल। मेरी एल्बम किसी तस्वीर की जगह यह कविता होगी, तुम्हारे भीतर समर्पित होगी उन औरतों को जो नहीं जानती पिस्टल क्या होती है, लक्ष्य क्या होता है। C8 सेक्टर 19 नोएडा 1 पृष्ठ 40 कहानी दूसरी आज़ादी लेखिका ममता कालिया। वरिष्ठ कथाकार ममता कालिया की इस कहानी में मुस्लिम समाज के स्त्री संसार की यथार्थ परक विडंबनाओं की ठोस शिनाख्त की गई है। स्त्री के लगातार मजबूत होते आकार का ग्राफ दर्शाती इस कहानी में स्त्री घर की अवधारणा को पुनर्परिभाषित किया गया है, जहां नए सिरे से घर परिवार में बसी स्त्रियों की अकुलाहट और अस्तित्व के बीच उनकी बढ़ती जिम्मेदारी और बदलती भूमिकाओं को बड़ी प्रामाणिकता के साथ दर्शाया गया है। जब वे पहले पहल इस घर में आए, तमन्ना भी नहीं थी और कॉलोनी भी। जीवन भी नया था और अनुभव भी। शहर से दूर गंगा के किनारे बनी इस कॉलोनी में खुले खुले दो मंजिले मकान थे, जिनके आगे की कच्ची जमीन में बेला महकता और पिछवाड़े जामुन और अमरूद के पेड़ लहलहाते। मकान सबके एक से थे, उनके नंबर अलग अलग थे। दरअसल यह मकान उन रुपयों से खरीदा गया था जो बेटों ने अरब से कमा कर माँ बाप को भेजे थे। तमन्ना के शौहर वसीम के दो और भाई थे। वसीम की शादी पर तीनों भाई इकट्ठे हुए। उनके माँ बाप प्रतापगढ़ से आए हुए थे और वे रिश्तेदारों को बड़े चाव से मक्का से लाई हरे रंग की तस्वीर तोहफे में देते कि वह सीधे वहीं से मंगाई है। घर का हर कमरा बच्चों की शरारतों से खिला खिला रहता। दोनों भाइयों ने प्रतापगढ़ वाली जमीन पर अपने मकान बनवा रखे थे, लेकिन इलाहाबाद के मकान में भी वे बराबर के हिस्सेदार थे। सास ससुर कुछ दिन साथ रहकर वापस प्रतापगढ़ चले गए, जहां उनकी एक ट्रक और दो टूरिस्ट बसें दिहाड़ी पर चलतीं। खान साहब को आए दिन गाड़ियों की मरम्मत, सर्विसिंग और चालान के सिलसिले में गैरेज, मिस्त्रियों और थानों से रिश्ता रखना पड़ता। प्रतापगढ़ से ज्यादा दिनों के लिए हटना उनके लिए मुमकिन न था। दोनों भाइयों के परिवार भी प्रतापगढ़ में रहते। भाभियाँ सिर्फ गर्मी सर्दी की छुट्टियों में थोड़े दिनों के लिए आ पाती, जब उनके बच्चों के स्कूल बंद होते हैं। जाते समय ऊपर के दोनों कमरों में संबंधित ताले लगा गए, हमारे कमरे हैं, जब हम आएंगे तो खुलवा कर सफाई करवा लेंगे। इतना बड़ा मकान नई दुल्हन ने संभलेगा नहीं। रह गए बस निचली मंजिल के तीन कमरे, रसोई और आगे पीछे की जगह। वसीम और तमन्ना के लिए इतनी जगह काफी थी। गैरेज में नई चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी थी, पर तमन्ना को ड्राइविंग नहीं आती थी। उसने कहा, इतने ड्राइवर अबू के पास आते हैं, किसी से कहिए हमें गाड़ी चलाना सिखा दे। पृष्ठ 41। वसीम बोला, क्या करोगी ड्राइविंग सीखकर? इससे अच्छा है अरबी सीखो, कुरान शरीफ पढ़ना रवा करो। जब कहीं जाना होगा अबू अपने आप ड्राइवर भेज देंगे। महीने भर बाद वसीम को वापस अरब जाना था, जहां पर सिलाई का काम करता था। वह बहुत हुनरमंद कारीगर माना जाता था। जाने से पहले उसने तमन्ना के लिए पूरे साल का टाइम टेबल बना दिया। तमन्ना हंसने लगी, यह मुझ पर छोड़िए कि कब मुझे पीहर जाना है कब ससुराल, अभी तो मैं बीए पूरा करूंगी। वसीम उखड़ गया, कोई नौकरी तो करवानी नहीं है हमें, फिर डिग्री से फायदा? आपने बीए क्यों किया था? अब पछता रहा हूं, इंटर के बाद ही टेलरिंग में लग गया होता तो अब तक बहुत तरक्की कर लेता। पढ़ाई भी जरूरी है, नेक औरत की तरह घर में रहना उससे ज्यादा जरूरी है, वसीम ने कहा। तमन्ना चुप हो गई, पर मन ही मन उसने सोच लिया कि वह प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म तो भर ही देगी, आखिर इसमें बुराई क्या है। वसीम अरब से बहुत कीमती, भारी और भूरे रंग का नकाब लाया था। उसका कहना था, अव्वल तो बाजार के चक्कर लगाने का काम भैया कर देगा, फिर भी कभी बाहर निकलना ही पड़े तो तमन्ना नकाब डाल लिया करे। एक दिन तमन्ना ने अपने लाल सूट के ऊपर यो ही नकाब पहना तो अपने आप को आईने में देख उसे हंसी आ गई। नकाब इतना बड़ा था और भारी कि वह सिर से पैर तक ढक गई, फिर भी वह जमीन पर लिथड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे कमरे में तमन्ना नहीं, कोई भूरे रंग का भूत खड़ा है। वसीम ने चाहा कि वह नकाब थोड़ा काट कर नाप का बना दे, पर तमन्ना ने कहा, आप छुट्टी पर आए हैं, क्यों परेशान होते हैं? मुझे भी सिलाई आती है, मैं खुद ठीक कर लूंगी। तमन्ना का बदन हल्का था और रंग गुलाबी। दुबली होने की वजह से कई बार वह वसीम से थोड़ी लंबी भी नजर आती। वसीम उससे 6 साल बड़ा था। वह हमेशा संजीदा सूरत बनाए रहता, जबकि तमन्ना को बात बात पर हंसी आती। कभी वह वसीम के पेट पर गुदगुदी कर उठती, थोड़ा हंसा कीजिए ना, जल्दी हंसिए। ऐसा लगा महीने भर की छुट्टी बहुत जल्द बीत गई। तमन्ना को वसीम तमाम हिदायतें देकर भारी मन से वापस अरब चला गया। बस इतनी तसल्ली थी कि प्रतापगढ़ की उनकी पुरानी खिदमतगार शकीला घर का काम करने के लिए पहले से मौजूद थी, और गांव से चच्चू ने अपना छोटा लड़का भैया भेज दिया था। वसीम ने अम्मी को भी समझा दिया कि बीच बीच में आकर तमन्ना की देखभाल कर लें। शुरू शुरू में अम्मी हर हफ्ते प्रतापगढ़ से आ जाती। उन्हें यह सुविधा था कि अपनी ही बस में बैठकर चली आती। कभी वे तमन्ना को प्रतापगढ़ लिवा ले जाती, पर इलाहाबाद वाले घर का दरवाजा खुला रखना भी जरूरी होता। उनकी दोनों बसों का रूट प्रतापगढ़ इलाहाबाद था। जो ड्राइवर इलाहाबाद का था वह आखिरी ट्रिप पर कमाई का हिसाब तमन्ना को सौंप देता। तमन्ना हिसाब किताब में अच्छी थी। खान साहब को इस बात का फक्र था कि उनकी तीनों बहुएं पढ़ी लिखी हैं। कभी कभी तमन्ना उदास हो जाती। उसे लगता अभी वह बिन ब्याही है। अप्रैल का आनंद मई जून तक कसक भरी याद बन गया, जैसे इसी वजह से उसका नाम तमन्ना रखा गया होगा। लेकिन उसके आसपास सभी परिवारों में ऐसे रिश्ते हुए थे। रिश्ता तय होने में लड़के का सऊदी में काम करना बड़ा अहम माना जाता। उसके अपने दो भाई आबू धाबी में काम करते और भाभियाँ यहाँ रहती। उनके समाज में सऊदी शब्द कामयाबी का पासवर्ड था। वहाँ के पैसों के बल पर लड़कों के परिवार कहीं भी ठसक के साथ रहते। सासें अपनी बहुओं से प्रेम से बोलती, क्योंकि उन्हीं के जरिए बेटों की कमाई माओं तक पहुँचती। परिवार के लोग कोई धंधा शुरू कर लेते, 15-20 साल में कमाऊ पुत सऊदी से लौट आते और उस धंधे से जुड़कर उसे और भी चमका लेते। सालाना छुट्टियों में वसीम के आने जाने का प्रताप था कि तमन्ना 3 साल में दो बेटियों की माँ बन गई। अधूरी पढ़ाई पूरी करने का वक्त ही न मिला। देखते देखते बच्चियों के दांत निकले, उन्होंने पहला कदम भरा और नन्हे नन्हे कदमों से घर में चलना शुरू किया। यह सब देखने को वसीम कभी घर में नहीं था। आखिर ऐसे कब तक चलेगा, तमन्ना वसीम से पूछती। थोड़ा और सब्र करो जाने मन, इतना पैसा कमा लूं कि यहाँ सिविल लाइंस में बढ़िया शोरूम खोल लूं। ताऊ ताई के बच्चों की नकल पर नूर और रूही अपने पापा को चच्चू कहती तो वसीम को बड़ी शिकायत होती। अब इन बच्चों के लिए मैं चच्चू बन गया। एक क्या जाने पापा और चच्चू का फर्क। आप तो कभी कभी मिलने वाली मिठाई हैं, जो कभी कभी आए वे चच्चू, तमन्ना चिढ़ाती। वसीम को ऐसे मजाक अच्छे न लगते। उसके हिसाब से जिंदगी की यह कोई खराब शक्ल नहीं थी कि वह रियाद से साल में एक बार आए और एक महीने जी भर कर रह ले। वह तमन्ना को बाहों में लेकर कहता, तुम तो मेरे लिए हमेशा नहीं रहती हो जाने मन, इतनी लपक तो माशूका के लिए भी नहीं होती जितनी मुझे बीवी की होती है। तुम कितनी लकी हो। तमन्ना को भी इस तरह रहने की आदत पड़ती जा रही थी। बहरहाल अपने को लकी मानने की उसकी वजहें दूसरी थीं। सूरत उसकी पहले ही सुहानी थी। बच्चों को जन्म देने के बाद बदन भी गदरा गया। वह आईने में अपने को देखती तो देखती चली जाती। उसे पता था वह कॉलोनी की सबसे सुंदर लड़की है। हाँ, लड़कपन अभी पूरा मिटा नहीं था, शायद शौहर के हर दम पास न रहने की वजह से। 11 महीनों का लावण्य बरकरार था। खाली वक्त में वह जम कर शॉपिंग करती, पिक्चर देखती, सहेलियों के संग फोन पर गप मारती। रिश्तेदारियां भी सब आसपास थीं, कोई न कोई आता रहता। पृष्ठ 42। वसीम यह सब जानता था। वह फोन से परिवार की खबर लेता रहता। मोबाइल पर न करके वह फोन हमेशा लैंडलाइन पर करता। अगर कभी फोन न उठाया जाता वह चिढ़ जाता। मियाँ बीवी में झड़प हो जाती। लैंडलाइन के और भी झंझट थे। तंग आकर तमन्ना ने लैंडलाइन फोन कटवा दिया। पता चलने पर वसीम बिगड़ा। अच्छी भली लैंडलाइन थी, क्यों हटवाया? कम से कम भैया ही उठा लेता था कभी। भैया वापस गांव चला गया। तुम तो बिना मुझसे पूछे जो मर्जी करती रहती हो। अब बच्चों को स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? बाजार का काम कैसे होगा? सब हो जाएगा, आप फिजूल फिक्र मत कीजिए, तमन्ना ने कहा। अकेली रहोगी तो 100 परेशानियां हैं। भैया को वापस बुला लो। उसे तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगी। वह सारा दिन कॉलोनी में आवारागर्दी करता था, स्कूल भी कभी जाता कभी नहीं, जरा भी कहना नहीं सुनता था, फिर भी मदद तो करता था। बाज आई मैं ऐसी मदद से, तमन्ना ने कहा। नूर ने फोन लेकर बताया, चच्चू पापा हम मम्मी के साथ स्कूल जाते हैं, बहुत मजा आता है। वसीम बौखला गया, उसने कहा, बेटा मम्मी को फोन दो। तमन्ना से उसने पूछा, बुर्का पहन कर जाती हो ना? हाँ, बुर्का तो तुम दे ही गए थे, दो मैंने और मंगा लिए हैं। वाकई तमन्ना बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के लिए घर से बाहर निकलती, यह काम उसे बहुत अच्छा लगता। अन्य बच्चों की माओं से परिचय भी होने लगा था, कुछ बच्चों के पिताओं से भी दुआ सलाम हुई। तमन्ना के पास इतने सुंदर कपड़े थे, तमाम सलवार सूट पहनने का मौका भी न आता। अब वह बच्चों को स्कूल पहुंचाते समय अपने रंग बिरंगे सूट पहनती और खुश होती। इतने खुशगवार कपड़ों पर भूरे काले रंग के नकाब पहनना कपड़ों की तौहीन लगता उसे। कुछ दिन वह तहाकर नकाब को बांह पर रख लेती, फिर उसने यह तकल्लुफ भी खत्म कर दिया। उसके दोस्तों ने कहा, बेहतर यह है जब शौहर आए तब नकाब में रहो। तमन्ना ने कहा, मैं तो नकाब सिर्फ उस सूरत में पहनती हूँ जब मुझे कपड़े बदलने में आलस आए। स्कूल पास ही था, सुबह सवेरे का टहलना हो जाता। लौटते हुए तमन्ना गोश्त सब्जी ब्रेड जैसी चीजें खरीद लाती, कॉलोनी के दुकानदार भी अब उसे पहचानने लगे थे। देखते देखते इधर कॉलोनी में एक नया चलन शुरू हुआ। जैसे ही घरों के मर्द काम पर चले जाते, बुजुर्ग नाश्ते के बाद की नींद में अलसाते, कॉलोनी में कुछ नौजवान लड़के कंधे पर बड़ा सा बैग उठाए या युवतियां हाथ में भारी सा थैला लटकाए आ जाती। ये आधुनिक किस्म के फेरी वाले थे जो घर घर जाकर सामान बेचते। इनके पास प्लास्टिक के डब्बे, फोल्डिंग चौकी, पर्स, टार्च होंगे, प्लेटें, परोसने वाले बड़े चम्मच, पानी की बोतलें जैसी चीजें होती। युवतियाँ ज्यादातर बिस्किट, नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, लिपस्टिक और अंतर्वस्त्र बेचती। एक सामान खरीदने पर अक्सर ये फेरी वाले एक सामान मुफ्त देते। गृहिणियों को सबसे ज्यादा आकर्षण इस मुफ्त चीज का होता। 11 से 2 बजे का समय एक छोटी फुर्सत का समय था। तब घर में न पति होते न बच्चे। तमन्ना के साथ तो पति वाली बंदिश भी नहीं थी। उसे अक्सर दो चीजों का इंतजार रहता, डाकिये का और फेरी वालों का। कई फेरी वाले तो सचमुच स्मार्ट लगते। तमन्ना बेजरूरत सामान भी खरीद लेती और प्रतापगढ़ वाले परिवारों में बांट देती। सर्दियों में ऊनी कपड़ों का गट्ठर लेकर पठान फेरी वाले घर घर घूमते। वक्त काटने के लिए तमन्ना किसी फेरी वाले को रोक लेती। वे शालों की तरह खोल खोल कर बेशुमार बेलबूटे उसके आगे बिछाते। तमन्ना को जरूरत किसी चीज की न थी। वह पहले ही सिविल लाइन से शॉपिंग कर चुकी होती, फिर भी वह कभी बच्चों की जैकेट या अपने लिए शाल खरीद ले डालती। एक दिन वह धूप में मूढ़ा डालकर बैठी हुई चाय पी रही थी। ठंड बेहिसाब थी, सूरज भी 12 बजे नमूदार हुआ था। तभी फेरी वाला कमाल खान आया। मैडम शाल लेंगी? एकदम नया माल आया है। तमन्ना ने मना कर दिया, पर कमाल थका हुआ था। उसे भरोसा था कि माल देखने पर ग्राहक को जरूर कुछ पसंद आ जाएगा। वह वहीं चबूतरे पर बैठ शाल दिखाने लगा। कश्मीरी, जमावार, पश्मीना, कढ़ाई वाले, यह शाल दिखा भी रहा था और देख भी। तमन्ना ने यूं ही पूछ लिया, चाय पियोगे? वह अंदर से चाय का ग्लास ले आई। दरअसल एक कप चाय बनाना उसे कभी न आया। जब भी वह चाय बनाती, एक कप चाय ज्यादा बन जाती। बनी बनाई चाय जाया जाए, इससे अच्छा है किसी के मुंह लग जाए। यही सोच कर वह कभी शकीला को दे देती तो कभी ढंक कर रख छोड़ती। धीरे धीरे यह रखा हुआ कप जैसे कमाल खान के नाम लिख गया। अब वह अपना गट्ठर नहीं खोलता, बस चबूतरे पर बैठ जाता। तमन्ना उससे बात कर लेती तो उसके पैरों की दिन भर की थकान जैसे क उठती। 2 घड़ी सुस्ता लो कमाल, ऐसा ठिकाना भी कहाँ मिलेगा जहाँ न ले कोई सौदा, कम से कम इंसानियत से तो पेश आए। तमन्ना उसे अपनी कोई सगी लगने लगी। वह सोचता, जैसे वह अपनी बीवी बच्चों से दूर है, वैसी ही तमन्ना अपने शौहर से दूर है। फर्क यही है कि वह 2 महीने बाद घर चला जाता है, तमन्ना साल भर इंतजार में बिता देती है। उसका जाना और आना दोनों ही तमन्ना के लिए मौसम का पैगाम बन गया। कमाल कहता, कैसी मुश्किल है मैडम, घर में इज्जत है पर कमाई नहीं, यहाँ कमाई है पर इज्जत नहीं। कभी भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तब दो एक शाल मुफ्त निकल जाते हैं, हर सीजन में तीन चार शाल चोरी चले जाते हैं। पृष्ठ 43। मैडम आप तो माल देखकर भी नहीं ललचाती, वरना कई बार अच्छे घरों की मालकिनें भी नीयत पलट जाती है। ट्राई करने के बहाने शाल ओढ़ कर देखती हैं और अगर मैं खबरदार न रहूं तो एक आध पार कर डालती हैं। हर साल सोचता हूं कोई और धंधा करूं पर मेरे पास कोई हुनर भी नहीं। अब्बा का कहा मानकर पढ़ लिख लिया होता तो कहीं नौकरी करता, बीवी साल के 365 दिन पहलू में रहती।